Sí, Dajinu, Lakshu, Mahinu, आप सबको 13 जुलाई 2020 का ये दिन मंगलमय हो। मैं आज आपको श्रीमाला जी का एक और सुंदर अति सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। अगस्त 1986 मास में ओम नमः शिवाय का पाठ लिखना आरंभ किया गया। 7 अगस्त वीरवार को श्री शादीलाल जी महाराज जी को अपनी जमीन पर ले गए। श्री महाराज जब वहाँ पहुँचे तो जमीन देखकर प्रसन्न हुए और तो शादीलाल जी को आशीर्वाद दिया। श्री शादीलाल जी ने ये भूमि मकान बनाने के लिए खरीदी थी। वहाँ से श्री महाराज जी शहर कुल्लू चले गए। जिस दिन श्री महाराज जी इस भूमि पर आए, आजकल जहाँ मैं रहती हूँ, तो ये एक गेहूं का खेत था और इसके खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसमें अखरोट लगते थे। श्री महाराज जी उस पेड़ की छाया में बैठ गए। श्रीमती जनक सूद ने परिवार सहित श्री महाराज जी का स्वागत किया। वहाँ दरी बिछाई और उन्हें बैठाया व घर से लाया हुआ भोजन प्रसाद महाराज जी को खिलाया। महाराज जी ने अति प्रसन्नता पूर्वक ये प्रसाद ग्रहण किया और शादीलाल जी को तथा पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। वहाँ से श्री महाराज जी कुल्लू शहर गए और सायकाल वापस आ गए। मैं भी उनके साथ ही थी। उसमें मैंने क्या जाना था कि कुछ वर्षों पश्चात मैं उसी जमीन में बने हुए मकान पर आकर अपना जीवन का अंतिम भाग व्यतीत करूंगी। श्री महाराज जी ने तभी बहुत पहले 1972 में भविष्यवाणी की थी कि इस घर का जो बालक विवेक है वो बाबा का इंचार्ज होगा। उनके ये शब्द आज भी मेरे लिए भक्तों के लिए एक वरदान सिद्ध होते हैं और मुझे रहकर श्री महाराज जी के वो शब्द याद आते हैं। कल भी मैं बिमला से बता रही थी, बिमला देखो महाराज जी ने कब हमारा इंतजार कर दिया था। 11 अगस्त को डॉक्टर मनोहर लाल का पत्र तथा उनका लेख मिला 11 अगस्त को, जिससे श्री महाराज जी को पढ़कर सुनाया गया। श्री महाराज बहुत प्रसन्न हुए एवं बच्चों की भांति सब भक्तों को बताने लगते। ऐसा लगता था कि मैं सबको माँ की महिमा से सरल भाव में अवगत करवा रहे हूँ। इस प्रकार अगस्त का मास व्यतीत हो गया। इन्हीं दिनों श्री महाराज जी ने गौदान की इच्छा भी व्यक्त की और पंडित श्री राम को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन गौदान कर दीजिए। अब गौ की खोज होने लगी। विवेक जी ने कहा, स्वामी जी मैं गांव जाकर अपने पिता से गौ ले आऊंगा। मेरी माता जी ने एक गौ मंदिर के लिए रखी है। श्री महाराज जी की आज्ञा हो जाने पर विवेक जी गांव चले गए। 26 अगस्त को विवेक जी अपनी जननी श्रीमती द्रौपदी जी के साथ गौ लेकर आ गए। श्री महाराज गौ माता के दर्शन करने के लिए भंडारा गृह में गए। गौ माता के दर्शन कर उनकी प्रसन्नता का पारावाहा बालक की भांति कभी गौ के पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते और कभी उसका निरीक्षण कर प्रशंसा करते। कैसा सुंदर रंग है, कैसी सुडोल है, आदि आदि। फिर 20 फुलकों को घी लगाकर स्वयं अपने हाथों से गौ माँ को खिलाए। 27 अगस्त को प्रातः 3 बजे मंदिर की घंटी बजी। सभी भक्त तथा सेवक अपना बिस्तर त्याग शोच नारादि से निवृत्त होकर अपने अपने कार्य में जुट गए। लगभग 10 बजे तक सब तैयारी हो गई। पंडित जी भी आ गए हवन करने पूजन करके श्री महाराज जी भंडारा गिरी में पहुँचे। गौ माता के लिए चांदी के सींग, गले के लिए माला चांदी की माला और एक सुंदर गोटे जड़ी रेशमी ओढ़नी बनाई गई थी। सर्वप्रथम श्री महाराज जी ने गौ माता के श्री चरण धोए तथा मंत्रोच्चारण के बीच उन्हें सींग तथा वस्त्र पहनाए। फिर अपने हाथों से चारा बनाकर खिलाया। पंडित लोग उच्च स्वर में वेद मंत्रोच्चारण कर रहे थे। भंडारे के भीतर तथा बाहर सैकड़ों भक्त गोदान का ये अलौकिक एवं अपूर्व दृश्य देख रहे थे तथा भाव विवल भी हो रहे थे। श्री महाराज ने सफेद कुर्ता सफेद पायजामा पहन रखा था। हल्का फुल्का शरीर योग तप द्वारा पूर्ण सदा हुआ था, देव काया मालूम होता था। हाव भाव मानो अनन्य गौ भक्त श्री कृष्ण के ही हैं। उन्हें गौ माता का दुलार तथा सेवा करते देख गोपाल कृष्ण की सामरी मूर्ति ही बलबत सामने आ जाती और लगता मानो श्री कृष्ण ही स्वयं गौ सेवा में लगे हैं। सब भक्तों ने गौ माता का जयकार बोला। फिर विधि पूर्वक गौ माता को पंडित धनी राम को स्पर्श कर दिया। श्री महाराज जी ने पंडित जी से बचा लिया कि वे आगे चलकर गौ माता को बेचेंगे नहीं और अच्छे ढंग से पालन पोषण करेंगे। गौ माता को विदा करके श्री महाराज जी यज्ञ स्थान में आए और पूर्णाहुति देकर यज्ञ पूर्ण किया। उस दिन मंदिर में फलाहार का भंडारा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के महामंत्र का अनवरत पाठ चलता रहा। रात्रि 8 बजे तक ये पाठ हुआ। फिर आरती करके गीता भवन में झूला उत्सव आरंभ हुआ। बाल गोपाल आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र के बालक बालिकाओं ने भगवान के जीवन तथा जीवन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डाला और आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कृष्णाष्टकम का स्वर स्वर पाठ किया। तत्पश्चात पंकज श्री कृष्ण की झांकी में तथा त्रिभुवन अर्जुन की झांकी में जनता के सामने आए। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु आपको कौन सा भक्त प्रिय है, सगुण साकार की उपासना करने वाला या निर्गुण निराकार को मानने वाला। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय का श्लोक पाठ जो बताया है उसे पढ़ा गया। इसमें बताया गया है कि निर्गुण निराकार की उपासना कठिन है लेकिन सगुण साकार की उपासना आसान है। फिर भक्त में क्या गुण होने चाहिए उनका भी विस्तृत वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। बाल गोपालों की इस कार्यक्रम के पश्चात रसीला एवं भक्ति पूर्ण कीर्तन कर प्रसाद आदि ग्रहण कर भक्त लोग लगभग 1 बजे ही महाराज को प्रणाम करके अपने अपने घर लौट गए। 2 अगस्त आज श्री महाराज उन्मत्त अवस्था में बैठे हैं। आने वाले भक्त भूमिष्ठ हो प्रणाम करते हैं और आपस में बात करते हैं। आज बाबा जी कौन सी लीला कर रहे हैं? श्री महाराज कुछ देर पश्चात बाल भाव में आ जाते हैं। कभी नर लीला करते हुए कहते हैं, मैंने शब्द वो अपने लिए नहीं कहते हैं, बाबा ने सब कुछ कर दिया है, अब जब भी भगवान बुलाएंगे बाबा चला जाएगा। कभी रोने लगते हैं और कहते हैं, मेरे बाद बाबा के बाद मंदिर में मम्मी जी का साथ कौन देगा? इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा। मंदिर का कार्य चल रहा है और श्री महाराज साक्षी भाव से सब देख रहे हैं। सितंबर 1986 8 सितंबर की सायंकाल में हमारी सोनमाई बैराती में श्री माँ के पास रही। राता बह जाने लगी तो श्री महाराज 5 वर्षीय बालक की भांति फूट फूट कर रोने लगे तथा बोले, बाबा भी जाना है। सोनू कुछ हैरान सी होकर देखने लगी तो उसने स्वयं ही प्रश्न किया, कहाँ? फिर स्वयं उत्तर दे दिया, परलोक में। किस प्रकार स्वयं ही प्रश्नोत्तर करते हैं महाराज जी। श्रीमती सुरेश का पत्र आया है कि वे अपनी जननी के साथ आएंगी, इसलिए हर पल उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। श्रीमती नरेश जी मेरे बचपन की सहेली है, वो भी 1 वर्ष मेरे साथ स्कूल में पढ़ी हुई है। उनके नाना श्री काका मुंशी अखाड़ा बाजार के माने हुए रईस थे और उनका घर मेरी माँ अथवा पिताजी के साथ ही है। मेरे माता जी ने लाला जी को धर्म का भाई बनाकर राखी पहनाई थी। अतः नरेश की माता जी मेरी माता जी को बुआ जी कहती हैं। सन 1978 में जब श्रीमती नरेश अपने मामा श्री कृष्ण गोपाल खुल्लर के घर रामगढ़ रायसन में आई तो मंदिर आकर मेरे से मिली। मैंने उन्हें श्री महाराज से मिलाया था। श्री महाराज दिल्ली में उनके घर 5-7 दिन भी रह आए हैं और नरेश से स्नेह रखते हैं। श्रीमती नरेश 1985 में भी 2 दिन के लिए आई थी। 13 सितंबर को ये लोग श्रीमती नरेश उनकी माता जी आए थे। श्री महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। कई प्रकार से उनका आतिथ्य करते हैं। बाल भाव में बार बार उनके सामने जा बैठते हैं और उनके कुशल मंगल पूछते हैं। श्रीमती नरेश भी श्री महाराज जी के लिए खादी की कुर्ते तथा खादी की सफेद लुंगी लेकर आई हैं, जो भी कई प्रकार का सामान लाई है, जैसे संगमरमर का चकला और जूसर। श्री महाराज ने सब उनके लिए इडली और नारियल की चटनी तैयार की, मूंग की दाल के बड़े और कच्चे केले के पकौड़े भी बनाकर खिलाए। श्री महाराज जी का नित नया भाव तथा नए नए व्यंजन देखकर दिल्ली निवासी माँ बेटी अपने को धन्य मानती हैं। इस पर श्री महाराज उन्हें देखकर हंसते हुए कहते हैं, नरेश मम्मी कितनी अच्छी है, जब हम दिल्ली गए थे तो इन्होंने हमारी कितनी सेवा की है, क्या बाबा कभी भूल सकता है? 21 सितंबर रविवार के दिन श्री महाराज जी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 1500 जवानों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। प्रातः 10 बजे से भंडारा आरंभ हो गया। 2 क्विंटल आटे की पोरियां और कई सब्जियां बनाई गई हैं। श्री महाराज जवानों को भोजन खाता देख अपनी आंतरिक पिपासा शांत करते हैं। वे क्या उठे, इन सब देशभक्तों के मुख से बाबा जी खा रहा है। कच्ची तारीख को श्री महाराज जी ने दोनों माताओं जय तथा उनकी माता जी को शाले भेंट स्वरूप देकर भाभी विदाई दी। आजकल स्वास्थ्य ठीक है। श्री महाराज दिन भर मजदूरों की देख रेख करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रसंग को विराम देती हूँ। गीता माँ।